आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम मंत्री बिल शॉर्टन ने संसद में अपने भाषण में एक नीति क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया।
Closest to my heart, and I know many members here, the National Disability Insurance Scheme.
बिल शॉर्टन इस योजना के सह निर्माता रह चुके हैं। अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि ये योजना उनकी सबसे बड़ी विरासत बनेगी। इस विरासत का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने खर्च वृद्धि को प्रति वर्ष 8% तक सीमित करने वाला कानून पेश किया। ट्रेजरर जिम चामर्स का कहना है कि इससे योजना लंबे समय तक चल पाएगी।
Spending on NDIS will continue to grow, spending on aged care will continue to grow, but what we've been able to show is a willingness and an ability to make sure that both of those grow more sustainably.
बिल चॉटन का कहना है कि कला और संगीत चिकित्सा जैसी सेवाओं के वित्त पोषण में बदलाव अनावश्यक लागत को रोकने के लिए है। उन्होंने स्काई न्यूज को बताया कि थेरेपिस्ट अपनी सेवाओं के लिए अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये साबित होना चाहिए कि ऐसी सेवाएं आवश्यक और प्रभावी हैं।
At the moment, an art or music therapist can charge $193 an hour for providing a service. If we've said that we want to review that, and we're happy for that to continue, provided we can see evidence that it's maintaining or improving the functional capacity of a participant. Now, in the event it's not having that material effect, but it's still a good thing for people to do, you'll be able to charge a community rate of $68 an hour.
NDIS बजट को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि कुछ प्रतिभागियों को योजना से बाहर कर दिया गया है। NDIA के सेवा वितरण के डिप्यूटी CEO स्कॉट मैकनॉटन बताते हैं।
As you may be aware, under the Act, there are two ways to enter the age, to yep. enter the scheme through Section 24 or Section 25. Section 25 yep. is the early intervention pathway.
Mm-hmm.
So it's mainly children will come in on the early intervention pathway. They may stay on the scheme for 1, 2, 3, 4, or 5 years and get their early supports, and then there will be a reassessment of their eligibility. Mm-hmm. Many of those children will graduate into mainstream and community mm-hmm. services. Some will do an eligibility reassessment and we'll move them on to a Section 24. I know I'm being technical, but that means you'll need lifelong supports from the scheme.
NDIS आवास प्रदाता हिना सेना SBS हिंदी से बात करते हुए इस स्कीम पर और प्रकाश डालती हैं।
NDIS अक्सर लोग जानते हैं नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम, बट ये इसमें होता क्या है ये काफी लोगों को आइडिया नहीं है। सो ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है जो भी लोग को परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो उनको बड़े होने के बाद वो डिसेबिलिटी हुई हो ड्यू टू एन एक्सीडेंट विच इज एन एक्वायर्ड डिसेबिलिटी, या फिर उनको बर्थ के साथ ही वो डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकें। क्योंकि कई बार जो जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती है उन्हें सोसाइटी में एकोमोडेट करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज उनकी जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से। तो NDIS इसी चीज को ब्रिज करना चाहती है ताकि जो लोग जिनको डिसेबिलिटी है वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जॉब कर सके, एक नॉर्मल इंसान की तरह फैमिली बना सके, एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके। सो यही मेन कॉन्सेप्ट है NDIS का, और इसीलिए NDIS को बनाया गया था 2015 में।
हिना मानती है कि NDIS के इस नए कानून का प्रभाव सबसे ज्यादा स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस पर पड़ेगा।
ये जो लेजिस्लेटिव चेंज आई है उस के दो लोग हैं जिनके ऊपर ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है. एक तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो जिनको एनडीआईएस की सर्विसेज मिल रही हैं वो, और दूसरा ये जो है जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं जो बैक्ड अप नहीं होते बड़े इन्वेस्टर्स से, जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस होते हैं उनके ऊपर ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है. और कई लोग कई दिशाओं से ये सुनने में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिससे कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस हैं जो इनोवेटिव अप्रोच से पार्टिसिपेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको उनको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उसको हटाने के लिए ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ वो उन्हीं कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी सर्विसेज यूज कर सकें जो इस चेंजेस के बाद रह पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में. इसका परिणाम यही होगा कि पार्टिसिपेंट्स के पास कम ऑप्शंस रहेंगे क्योंकि जो स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज हैं वो या तो अपनी कंपनीज शट डाउन कर रही हैं या फिर वो बड़ी कंपनीज उनको एक्वायर कर रही हैं.
एनडीआईएस कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में योजना के खिलाफ शिकायतों में 78% की वृद्धि हुई है. समर्थकों का मानना है कि खर्च को सीमित करने की दौड़ में विकलांग ऑस्ट्रेलियाई लोगों को समर्थन प्रदान करने की लागत कहीं और धकेली जा रही है. ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ रॉस जॉयस कहते हैं,
There seems to be an assumption that there's actually something for them to get in terms of supports that are outside of the NDIS. That's not the case, as we know from what's come out of our Disability Royal Commission. And that's not the case of what was recommended from the NDIS review late last year, where they said we need to have foundational supports, as they term them, where people who aren't part of the scheme are able to get the sort of supports that they need in community to live a good life.
संगीत और कला चिकित्सा के अलावा और कई क्षेत्रों में फंडिंग घटाने की बात की गई है.
कई चीजें हैं जो ऑलरेडी लेजिस्लेशन में उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं, जैसे म्यूजिक थेरेपी एक सर्विस है जो कई बार जो नॉन वर्बल लोग होते हैं उनके लिए कई बार कम्युनिकेशन का एक मेथड होता है म्यूजिक, और कई बार साइकोसोशल केसेस में म्यूजिक थेरेपी उनको ट्रॉमा से डील करने में और अपने स्किल्स को बढ़ाने में यूज किया जाता है. पर उनमें आप देख रहे हैं कि अब उसको हटा दिया गया है कि वन ऑन वन आप म्यूजिक थेरेपी नहीं कर सकते, आपको ग्रुप सेटिंग में ही म्यूजिक थेरेपी करनी है. कई केसेस मुझे ऐसे भी सुनने में आ रहे हैं कि इमोशनल सपोर्ट या जो सेफ्टी डॉग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को एपिलेप्सी है और उसकी जो सर्विस डॉग है वो एपिलेप्सी अटैक आने के पहले उसको बता देती है कि तुम्हें अटैक आने वाला है एपिलेप्सी का, तो आप कोई सेफ जगह में बैठो, आप रोड पर मत चलो. तो उसकी फंडिंग हटा दी गई है. तो वो $58,000 जो पहले एनडीआईएस फंड कर रही थी अब उन्होंने हटा दिया है. तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक फैमिली के लिए $58,000 आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करना बहुत बड़ी बात. तो ये सारे एरियाज में हम देख रहे हैं कि धीरे 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 करके वो फंडिंग इन लोगों की घटा रहे हैं. जहां पे किसी इंसान को वन इन वन लेवल का सपोर्ट चाहिए कि एक एक इंसान हमेशा उनके साथ रहे, उनको अब ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, आपको ग्रुप सेटिंग में ही रहना पड़ेगा. सबको ये बोला जा रहा है कि आपको शेयर करना पड़ेगा. पर जब एनडीआईएस का कॉन्सेप्ट ये था कि हम पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनको एक ऐसा जरिया दे सकें जिससे वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकें, नॉर्मल ऑस्ट्रेलियंस की तरह वो जी सकें, तो फिर अगर हम किसी नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन को ये नहीं बोलेंगे कि आप अपना घर तीन लोगों के साथ शेयर करें, तो फिर आप जिनको डिसेबिलिटी है उनको कैसे बोल सकते हैं कि आपको अब तीन लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा.
SBS न्यूज से डेबरा ग्रोआक और SBS हिंदी से इति देवान ने प्रस्तुत किया आपके लिए ये अंश.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.